नमस्कार, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है आपका। दोस्तों, मैं हूं मुनीश शर्मा।
और मैं हूं विनीता।
श्रोताओ, इस बार हम आपके साथ अपने 16 से 30 नवंबर के अंक की चर्चा कर रहे हैं। मानव द्वारा रचित अगर किसी रचना को अमर कहा जा सकता है श्रोताओ, तो वो है भारत का संविधान। संविधान को राष्ट्र का पवित्र ग्रंथ और पथ प्रदर्शक मानते हुए बीते 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास का एक ऐसा आधार स्तंभ तैयार कर दिया है जिससे देश दशकों से वंचित था, या जिन समस्याओं को पहले नियति मानकर कोई नेता हाथ लगाने से भी परहेज करता था, उसे प्रधानमंत्री ने छुआ भी और समाधान करके भी दिखाया। अब असंभव भी संभव है। संविधान अब महज कानून की किताब नहीं है, बल्कि सही अर्थों में उसे बना दिया गया है सामाजिक दस्तावेज। बीते 10 वर्षों में सामाजिक सरोकार के साथ किए गए विकास कार्य और संविधानवाद की पुनर्स्थापना से संविधान दिवस जन जन के लिए एक उत्सव बन गया है। इस 26 नवंबर को संविधान को अंगीकार करने के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो देश 10वां संविधान दिवस भी मना रहा है। आइए जानते हैं कि कैसे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास संविधान की भावना का सबसे सशक्त प्रकटीकरण बन गया है।
अच्छा होता देश आजाद होने के बाद, 26 जनवरी प्रजासत्ताक पर्व की शुरुआत होने के बाद, हमें 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में देश में मनाने की परंपरा बनानी चाहिए थी, ताकि उसके कारण हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी संविधान बना कैसे, कौन लोग थे इसको बनाते थे, किस परिस्थितियों में बना, क्यों बना, हमें संविधान कहां ले जाता है, कैसे ले जाता है, किसके लिए ले जाता है, इन सारी बातों की हर वर्ष अगर चर्चा होती है तो संविधान, जिसको दुनिया ने एक जीवंत इकाई के रूप में माना है, एक सामाजिक दस्तावेज के रूप में माना है, विविधता भरे देश के लिए ये एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में, पीढ़ी दर पीढ़ी अवसर के रूप में काम आता। लेकिन कुछ लोग इसे चूक गए।
हर नागरिक का आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़े, ये संविधान की भी अपेक्षा है और केंद्र सरकार ने निरंतर इस दिशा में काम किया है। संविधान के उद्देश्यों को पूरा करने में बीते कुछ वर्षों में अभूतपूर्व प्रयास हुए हैं। सभी के लिए समान विकास और रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं का देश का हर नागरिक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभार्थी बन गया है। देश अब प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाता है। यही वो तारीख है जब 1949 में देश ने सभी नागरिकों को एक समान अधिकार देने वाले संविधान को अपनाया था। संविधान के मुख्य शिल्पी बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जहां सबको एक समान अवसर देकर सामाजिक न्याय की स्थापना की जाए। लेकिन ये दुर्भाग्य ही है कि आजादी के बाद लंबे समय तक समानता के सिद्धांत की अनदेखी हुई। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपने शासन की शुरुआत में ही वंचितों को वरीयता का सिद्धांत अपनाया और इस मंत्र को लेकर आगे बढ़ना शुरू किया।
इसका परिणाम ये हुआ कि पहली बार कोई सरकार खुद चलकर उन लोगों तक पहुंची जिन्हें कभी भी योजनाओं का लाभ नहीं मिला था। दशकों तक सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिलती थी, अब उनका जीवन बदल रहा है। गरिमामय जीवन स्तर मिलने से लोग भी राष्ट्र के विकास में योगदान दे रहे हैं। ये परिवर्तन नेतृत्व की निष्ठा और नियत से आया है, कार्य संस्कृति में बदलाव से आया है। जबकि नौकरशाही वही है, फाइलें वही हैं और काम करने वाले भी वही हैं और तरीका भी वही है। इस अभूतपूर्व परिणाम की वजह है कि केंद्र सरकार ने गरीब मध्यम वर्ग को प्राथमिकता दी और सारी परिस्थितियां बदलती चली गईं। एक अध्ययन के अनुसार 5 वर्षों में देश के 13 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आए। अगर 10 वर्ष का आकलन करें तो केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के चलते देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। ये संख्या कोई साधारण नहीं है। दुनिया के कई देशों की आबादी भी इतनी नहीं है जितने गरीबों को बीते 10 वर्षों में बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया है। इतना ही नहीं, आज के बदलते हुए भारत में देश का नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर की क्रांति का साक्षी बन रहा है। आधुनिक एक्सप्रेसवे हो, आधुनिक रेलवे स्टेशन हो, हवाई अड्डे हो, जलमार्ग हो, देश इन पर लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रहा है।
जब कोई सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतनी बड़ी धनराशि खर्च करती है तो स्वाभाविक है कि इसके कारण रोजगार के भी लाखों नए अवसर सृजित होते हैं। 2014 के बाद से देश में एक बहुत बड़ा बदलाव ये भी आया है कि बरसों से अटकी भटकी लटकी परियोजनाओं को खोज खोज कर मिशन मोड में पूरा किया जा रहा है। बिदर कलबुर्गी रेलवे लाइन ऐसी ही एक परियोजना थी जिसे 22-23 साल पहले शुरू किया गया था, लेकिन ये प्रोजेक्ट भी अटका हुआ था, भटका हुआ था। केंद्र सरकार ने 2014 में इसे पूरा करने का संकल्प लिया और केवल 3 वर्षों में इस परियोजना को पूरा करके दिखाया। सिक्किम के पाक्योंग हवाई अड्डे की परिकल्पना भी 2008 में की गई थी, लेकिन 2014 तक ये केवल कागजों पर ही बनता रहा। वर्ष 2014 के बाद इस परियोजना से जुड़ी सभी बाधाओं को दूर करके 2018 तक इसे पूरा भी किया गया। इसी तरह पारादीप रिफाइनरी की भी चर्चा 20-22 साल पहले शुरू की गई थी, लेकिन 2014 के बाद केंद्र सरकार ने इसकी सभी बाधाओं को दूर कर साकार कर दिया। रियल एस्टेट में रेरा कानून की वजह से पारदर्शिता लाकर मध्यम वर्ग को राहत दी गई। भारत सरकार की नीति और निर्णयों ने आज देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। बड़ी बड़ी संस्थाएं भारत की विकास दर को लेकर बहुत सकारात्मक है।
भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ही नहीं है, इसे लोकतंत्र की जननी भी कहा जाता है। भारत के 5000 वर्ष पुराने ग्रंथ वेदों में भी सभा और समितियों की बात कही गई है। भारत की संसदीय परंपराओं पर देशवासियों के अटूट विश्वास की एक और बड़ी वजह है उसकी विविधता, विशालता और जीवंतता। हर आस्था के लोग, सैकड़ों तरह के खानपान, तरह तरह के रहन सहन और सैकड़ों भाषाएं भारत की पहचान है। भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र ही नहीं बल्कि लोकतंत्र की जननी भी है। भारत आज वैश्विक लोकतंत्र का भी बहुत बड़ा आधार है। लोकतंत्र हमारे लिए सिर्फ एक व्यवस्था नहीं, एक संस्कार है, विचार है और एक परंपरा है। हमारे वेद हमें सभा और समितियों के लोकतांत्रिक आदर्श सिखाते हैं। महाभारत जैसे ग्रंथों में गणों और गणतंत्रों की व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। हमारा लोकतंत्र ही हमारी प्रेरणा है और हमारा संविधान ही हमारा संकल्प है। इस प्रेरणा, इस संकल्प की सबसे श्रेष्ठ प्रतिनिधि अगर कोई है तो वो है हमारी संसद। आजादी के अमृतकाल में भारत नए संसद भवन में प्रवेश कर चुका है और संसद की ये नई इमारत इस प्रयास का जीवंत प्रतीक बनी है। भारत अपने प्राचीन आदर्शों और संविधान की भावना को लगातार मजबूत कर रहा है। जन केंद्रित नीतियों की ताकत से आज देश और देश के गरीब और महिलाएं सशक्तिकरण को महसूस कर रहे हैं। कानून सरल हो रहे हैं और समय समय पर न्याय के लिए न्यायपालिका भी लगातार सार्थक कदम उठा रही है।
केंद्र की वर्तमान सरकार ने शासन प्रणाली को पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता के सिद्धांतों पर आगे बढ़ाया है। सरकार ने पहले दिन ही ये स्पष्ट किया था कि सुशासन का उद्देश्य केवल नीतियों का उचित कार्यान्वयन करना ही नहीं बल्कि ये भी सुनिश्चित करना है ताकि सभी नागरिकों को समान अवसर और संसाधन प्राप्त हो। इस दिशा में केंद्र की सरकार बड़े ही प्रभावी ढंग से नीतियों को लागू करके संविधान के उद्देश्यों की पूर्ति कर रही है। वन नेशन वन राशन कार्ड से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने वाले नागरिकों को नया राशन कार्ड बनाने के चक्करों से मुक्ति मिली है। पहली बार देश में एक ही राशन कार्ड से कहीं भी अनाज लेना संभव हुआ। 9 अगस्त 2024 को इस योजना की सफलता के 5 वर्ष पूरे हुए। इसी तरह एक देश एक गैस ग्रिड का उद्देश्य हर घर में एलपीजी और वाहनों के लिए सीएनजी उपलब्ध कराना है। इससे उन हिस्सों की निर्बाध गैस कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो रही है जहां गैस आधारित जीवन और अर्थव्यवस्था पहले सपना हुआ करता था। देश भर में खुदरा खरीदारी और अन्य खरीदारी के अलावा विभिन्न महानगर और अन्य परिवहन प्रणालियों के माध्यम से निर्बाध यात्रा करने में सहायता देने के लिए राष्ट्र कॉमन मोबिलिटी कार्ड विकसित किया गया। उच्चतर शिक्षण संस्थाओं के लिए प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA का गठन किया गया।
संविधान की मूल भावना को ध्यान में रखकर ही प्रधानमंत्री मोदी ने 31 अक्टूबर 2015 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती के अवसर पर एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल की घोषणा की थी। इससे विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संस्कृति, परंपरा और प्रथाओं के ज्ञान से राज्यों के बीच बेहतर समझ और जुड़ाव पैदा होगा, जिससे भारत की एकता और अखंडता मजबूत होगी। वहीं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हर महीने 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को निशुल्क खाद्यान्न के लिए खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था भी की गई है। पात्रता के अनुसार हर महीने हर परिवार को 35 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल से जल पहुंचाने की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को ही कर दी गई थी। इस मिशन के तहत 15 करोड़ ग्रामीण परिवारों के लिए नल से जल उपलब्ध कराना है और ऐसी ही बहुत सी योजनाएं संविधान की मूल भावना को ध्यान में रखकर वर्तमान सरकार सफलतापूर्वक चला रही है।
निश्चित रूप से भारत का लोकतंत्र और संविधान दुनिया के लिए पथ प्रेरक है और बीते 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने संविधान के महत्व के बारे में लोगों को परिचित कराने के लिए दर्जनों कदम उठाए हैं। सही अर्थों में प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान की केवल बात नहीं की, बल्कि उसके आदर्शों को आत्मसात कर कथनी और करनी दोनों में उसे साकार किया है। उन्होंने संविधान की पुनर्स्थापना कर जन जन को संविधान के प्रति जागरूक कर दिया। अब जब संविधान के स्वीकृत होने के 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, देश अपना 10वां संविधान दिवस मना रहा है। देश के 140 करोड़ नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि सामूहिक संकल्प के साथ संविधान की प्राण प्रतिष्ठा के सारथी बने। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं,
हमारा संविधान ये सिर्फ अनेक धाराओं का संग्रह नहीं है, हमारा संविधान सहस्त्रों वर्ष की भारत की महान परंपरा, अखंड धारा, उस धारा की आधुनिक अभिव्यक्ति है और इसलिए हमारे लिए लेटर एंड स्पिरिट में संविधान के प्रति समर्पण, और जब हम इस संवैधानिक व्यवस्था से जनप्रतिनिधि के रूप में ग्राम पंचायत से लेकर के संसद तक जो भी दायित्व निभाते हैं, हमें संविधान के लेटर एंड स्पिरिट को समर्पित भाव से ही हमें अपने आप को हमेशा सज्ज रखना होगा। और जब ये करते हैं तो संविधान की भावनाओं को कहां चोट पहुंच रही है उसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, और इसलिए इस संविधान दिवस को हमें इसलिए भी मनाना चाहिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो संविधान के प्रकाश में सही है कि गलत है, हमारा रास्ता सही है कि गलत है। हर वर्ष संविधान दिवस बनाकर के हमने अपने आप को मूल्यांकन करना चाहिए।
श्रोताओ, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज बस इतना ही। अपनी सावरण कथा पर इस चर्चा को हम अगले सप्ताह भी रखेंगे जारी। आप हमारी इस पाक्षिक पत्रिका को देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पर, जिसका पता है newindiasamachar.pib.gov.in, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ भी सकते हैं और अगर चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है। इसका एक हैंडल है NIS@PIB India। इसके अलावा आप हमें response@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने सुझाव भी भेज सकते हैं। हमें रहता है आपके सुझावों का हमेशा इंतजार। दीजिए हमें तब तक के लिए आज्ञा। मैं हूं मुनीश शर्मा
और मैं विनीता।
धन्यवाद।